आज है 8 मई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। लाहौर में सूफी दरगाह दाता दरबार के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 10 लोग मारे गए, राजनीतिज्ञों ने कड़ी निंदा की।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को इस दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाने की तौफीक अता फरमाए।
ईश निंदा के आरोप में फांसी के फंदे से छूटी आयशा बीबी ने आखिरकार पाकिस्तान छोड़ा।
उसके लिए यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसको अगर वो यहाँ पे रहती तो उसको सारी बात है उसको किल कर देते लोग।
ईरान ने परमाणु समझौते से आंशिक रूप से अलग होने की घोषणा की। चीन ने समझौते का सम्मान करने की अपील की। लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। ईरान ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से खुद को आंशिक रूप से अलग कर रहा है, जिसके बाद रूस, फ्रांस और चीन ने ईरान न्यूक्लियर डील को समर्थन देने की बात दोहराई है। ये समझौता साल 2015 में हुआ था, लेकिन ठीक एक साल पहले अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इस बीच ईरान और रूस ने समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले यूरोपीय देशों से इसे बचाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि बाकी की पार्टियों को भी अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में 8 साल तक जेल में रही ईसाई महिला आसिया बीबी ने आखिरकार देश छोड़ दिया है। आसिया बीबी के वकील ने बीबीसी को बताया कि अब वो कनाडा में हैं। बीते नवंबर में उनकी मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। माना जाता है कि रिहाई के बाद हिंसा की आशंका के चलते उन्हें खुफिया एजेंसियों ने अपनी सुरक्षा में रखा था। पाकिस्तान के लाहौर में एक सूफी दरगाह में आज संदिग्ध आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं। पाकिस्तानी तालिबान के एक गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमाके की निंदा की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमले में पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद से इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं और पूरे क्षेत्र की तलाशी ली जा रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एनजीओ की बिल्डिंग में अफगान विशेष बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बंदूकधारी चरमपंथी एनजीओ के ऑफिस में घुस गए थे और वहां एक बड़ा धमाका किया। काबुल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि कई लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने कहा,
ये
हमला एक काउंटर पार्ट सहायता समूह के दफ्तर पर हुआ है। अफगान सुरक्षा बलों ने अब तक कम से कम 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और आगे का अभियान जारी है। ये थे काबुल पुलिस के एक प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका में आज आम चुनाव हुए हैं। पिछले 25 साल से देश की सत्ता पर काबिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के बावजूद जीत अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ही होगी। जैकब जुमा की जगह सिरिल रामापूसा ने ली थी, जिनका कहना था कि वो पार्टी में सब ठीक कर देंगे और दक्षिण अफ्रीका में बदलाव लाएंगे। केप टाउन में मौजूद कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि खराब मौसम के बावजूद लोग वोट करने के लिए घर से निकलेंगे। एक महिला ने कहा, जब भी वोट करने का मौका मिला हमने वोट किया और आज मैं इसलिए आई क्योंकि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए आप घर पर बैठकर शिकायत नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया था कि बारिश हो ना हो मैं तो वोट देने जाऊंगी। ये थे दक्षिण अफ्रीका की एक महिला मतदाता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक का कहना है कि उसने 2018 से अब तक कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 500 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाया और उन्हें सजा दी। इराक के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल करीब 200 विदेशी संदिग्धों से पूछताछ जारी है और 40 से ज़्यादा पर मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि जिस संदिग्ध पर आईएस से जुड़े होने का आरोप था उसे 6 महीने तक पूछताछ की गई, जबकि जिन पर समूह के अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आरोप था उनसे 1 साल तक पूछताछ हुई। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आज कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से, जहां ईश निंदा के आरोप में फांसी के फंदे से बच गई आयशा बीबी ने आखिरकार मुल्क छोड़ दिया है। दूसरी ओर लाहौर में एक आत्मघाती बम धमाका हुआ है। शहर की मशहूर सूफी दरगाह दाता दरबार के बाहर हुए इस हमले में लगभग 10 लोग मारे गए हैं और 25 लोग घायल हुए हैं। दाता गंज बख्श की दरगाह की पूरे पाकिस्तान में बहुत मान्यता है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां दुआ करने आते हैं। अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि पुलिस की एक जीप आत्मघाती हमलावर के निशाने पर थी। पंजाब असेंबली में विपक्ष के नेता हमजा शाहबाज ने हमले की निंदा की।
मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने शहीदों के साथ हैं। इस कौम के सीने पे दहशतगर्दी के बहुत से जख्म हैं और इस कौम के बेटों ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत से जामे शहादत नोश फरमाए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को इस दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए।
बीबीसी उर्दू के संवाददाता उमर दराज घटनास्थल पर मौजूद थे, जहां मैंने उनसे कुछ देर पहले संपर्क किया फोन पर और बात की।
इस वक्त दाता दरबार के बाहर पुलिस ने कॉर्डन कर रखा है और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और आज सुबह यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी जो है उसको निशाना बनाया गया था। पुलिस का मानना है कि ये एक खुदकुश धमाका था, जिसमें कि एक खुदकुश बम्बार ने, एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस के अलीट यूनिट से ताल्लुक रखने वाली एक गाड़ी को निशाना बनाया। ये गाड़ी जो है वो दाता दरबार के गिर्द पेट्रोल कर रही होती है, इसकी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी की। तो ये उस वक्त पेट्रोल कर रही थी और कुछ देर के लिए एक जगह पे रुकी थी एक गेट के सामने, जब एक सुसाइड बॉम्बर ने आकर इसको निशाना बनाया और इसका उसमें जो पुलिस के एहलकार थे उनमें से चार एहलकार जो है वो इसमें हलाक हुए।
उस वक्त क्या दाता दरबार में बहुत भीड़ थी या खाली पड़ा हुआ था?
जी, ये दाता दरबार जो है ये पाकिस्तान के चंद बड़े दरबारों में से एक है और ये है भी लाहौर के बिल्कुल सेंटर में, तो इसमें तकरीबन हर वक्त ही लोग मौजूद रहते हैं। रात को भी और दिन में भी लोगों की तादाद अच्छी खासी होती है। ये जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त तकरीबन 8:30 to 9 का टाइम था, तो उस वक्त इतने बहुत ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर शायद अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर कम भी हो तो काफी तादाद लोगों की हर वक्त यहाँ पर रहती है। तो जो लोग हलाक हुए उसमें पुलिस के 4 लोग थे और उसके अलावा जो राहगीर थे, जो आस पास से आने जाने वाले लोग थे, वो भी 6 लोग उसमें हलाक हुए इस धमाके में। कुल 10 लोग जो हैं वो इस धमाके में हलाक हुए और 24 लोग जो हैं 25 लोग जख्मी हुए।
कुछ खबरों में कहा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इसमें हाथ है या उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है।
इस हवाले पर सरकारी तौर पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई अभी तक। तमाम जो ज़राए इत्तला के कुछ नुमाइंदे हैं या कुछ जो चैनल्स हैं उनको एक तंजीम ने उनको कॉन्टेक्ट करके इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। वो जो निस्बतन एक अननोन सी तंजीम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सेंटर ग्रुप है शायद तालिबान, तहरीके तालिबान का, लेकिन ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। इस हवाले से सरकारी तौर पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आई।
जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मैं भी दाता दरबार में एक बार होके आया हूँ, वहाँ शिया हजरात भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं और दूसरे जो मजाहिब हैं उनके लोग भी आते हैं। दाता दरबार में बहुत फैज है ऐसा कहा जाता है, बहुत वहाँ श्रद्धालु आते हैं। फिर वहाँ हमला करने का मकसद कुछ साफ हुआ?
दाता दरबार एक दफा पहले भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है, जब यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी हलाकतें भी हुई थी। और इस मरतबा लेकिन पुलिस जो है उसका कहना यह है कि दाता दरबार जो है वो सुसाइड बॉम्बर का टारगेट नहीं था। अब तक की जो एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके मुताबिक वो ये डिटरमिन नहीं कर सके कि पुलिस को क्या टारगेट करके, उन एहलकारों को टारगेट करके मारा गया या रैंडमली पुलिस का एक टारगेट जो है उसको पिक किया गया। लेकिन ये भी अभी जानना बाकी है कि ये एक सेंटर में वाकई दरबार है लाहौर के, यहाँ तक सुसाइड बॉम्बर पहुंचे कैसे, जबकि पूरे शहर में कैमरे भी लगे हुए हैं और एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो काम करता है, इसके ऊपर हर वक्त निगरानी हो रही होती है, उसके बावजूद इतना डीप करना ये कैसे मुमकिन हुआ?
उर्दू के संवाददाता उमर दराज लाहौर से। अगली खबर भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की बेहरमती करने के आरोप में मौत की सजा से बरी कर दी गई आसिया बीबी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। उनके वकील ने बीबीसी को बताया कि आसिया कैनेडा पहुंच चुकी हैं। पड़ोसियों से मामूली झगड़े के बाद उन्हें ईश निंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई। 8 साल तक कैद तनहाई में रखा गया, मगर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बावजूद वो अपने मुल्क में नहीं रह सकीं। इस्लामाबाद के इन लोगों ने कहा कि आसिया बीबी का जीवन खतरे में था।
इधर रहती तो कोई भी मसला उनके साथ हो सकता था, जानी भी हो सकता था, लेकिन ये अच्छा हो गया कि वो दूसरे मुल्क चली गई हैं। और हमें ये अच्छा लगता है कि जो दूसरी कंट्री हैं वो करती हैं हमारे इस तरह के कोई मसले मसाइल हों तो उनको वो हल करती हैं।
उसके लिए यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसको अगर वो यहाँ पे रहती तो उसको जारी बात है उसको किल कर देते लोग। तो हमारे लिए तो हम तो यही सोचते हैं कि ठीक अच्छा हुआ कि उसको उन्होंने भिजवा दिया, ताकि उसकी एक तो उसकी जान की सेफ्टी हो गई है, दूसरा ये कि चलो अपने बच्चों से जाके मिल लेगी।
इस्लामाबाद के आम लोग। मैंने कराची में बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी से पूछा कि आसिया के मुल्क छोड़ने के बाद पाकिस्तान में क्या हलचल हुई।
देखिए राजेश, पहले भी जब आसिया बीबी का फैसला आया था इस मुकदमे का, और उसके बाद फिर इस पे अपील दायर की गई, उसका फैसला आया, तो हमने हमेशा यही देखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इस केस की बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होती। और ना सिर्फ ये केस बल्कि जो ब्लास्फेमी के दूसरे केसेस होते हैं उनको भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स वगैरह हैं वो ज्यादा कवर नहीं करते। तो सोशल मीडिया पे तो ये खबर अभी आम है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी सब लोगों के पास नहीं है, लिटरेसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक आबादी का बहुत छोटा हिस्सा जो सोशल मीडिया पे होता है। तो अभी तक बजाय ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा खबर फैली नहीं है। जब उनको बरी करने का फैसला किया गया था और उसके बाद जो फिर मजहबी जमातों ने प्रोटेस्ट किए थे, जिनमें तहरीक लबैक पाकिस्तान नामी जो ग्रुप है वो सबसे आगे था, तो हुकूमत ने उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था जिसमें उनके सैकड़ों सपोर्टर्स पकड़े गए थे, उनके लीडर्स को जो है वो बंद कर दिया गया था, उनके मेन लीडर जो है वो अभी भी खादिम हुसैन रिजवी जो है वो अभी भी हिरासत में है।
ये जो ईस्ट निंदा कानून जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, उसकी वजह से होने वाली घटनाओं का कुछ जिक्र करेंगे आप?
देखिए, जो पाकिस्तान में एक इदारा है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, उन्होंने 2017 तक के जो है वो फिगर्स शेयर किए थे 1987 से लेकर 2017 तक के, तो उनके मुताबिक अब तक तकरीबन जो है वो 1550 लोगों के खिलाफ जो थे तौहीन मजहब या जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद हैं उनकी तौहीन करने या कुरान की तौहीन करने के इल्जाम लगाए गए। लेकिन इन लोगों में से 75 लोग ऐसे थे कि जिन्हें इससे पहले के उनके ऊपर मुकदमे चलते और सजा हो पाती, इससे पहले ही उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस कानून के ऊपर इसकी तब्दीली की बात करने वाले लोग भी बहुत हाई प्रोफाइल जो हैं वो निशाना बनाए गए, और आसिया बीबी ही के गिरफ्तारी के बाद पंजाब के फॉर्मर गवर्नर थे सलमान तासीर, उन्होंने मीडिया में आसिया को सपोर्ट करने का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि ईश निंदा का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इसको तब्दील होना चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उनको उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने जो कि पुलिस की तरफ से उनको दिया गया था उनकी हिफाजत के लिए, उसने गोलियां मार के कत्ल कर दिया था, उसने इसको एक्सेप्ट किया था और उसने कहा था कि जो सलमान तासीर थे वो ब्लास्फेमर थे, तौहीन के मुर्तकिब हुए थे और इसलिए मैंने उनको मार दिया।
अब ये देखिए कि आसिया बीबी बरी हो गई सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। कहाँ है डेमोक्रेटिक फोर्सेज, कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ है आवाज उठाने वाले, ये सवाल उठ रहे हैं क्या वहाँ?
देखिए राजेश, इस चीज का एहसास पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था और आसिया के लॉयर जो है वो सैफुल मलूक वो भी इस बारे में बड़ा ओपनली खुल के बात कर चुके, उनके खानदान से मेरी मुलाकात होती रही, उनके हस्बैंड से, आसिया के हस्बैंड से हम अनडिस्क्लोज लोकेशन पे इस दौरान मिलते रहे क्योंकि सब वो लोग छुपे हुए थे, उन सबकी जान को खतरा था। तो पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फतवे दिए आसिया के खिलाफ, तो उनकी जान को खतरा था और कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो उसका बहुत आसानी से टारगेट बन सकती थी।
ये थी कराची पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब चुनाव चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद इस वक्त रामलीला मैदान में हैं, लेकिन उनसे बात करें इससे पहले आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कह रहे हैं।
जाल खत्म किया है, जीएसटी को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंस्पेक्टर राज से लोगों को मुक्ति मिले। भाई और बहनों, जब साफ नीयत से काम होता है, ईमानदारी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण अभी देना शुरू किया ही है, वो अपनी सफलताओं के बारे में बता रहे हैं। चलते हैं जुबैर के पास। जुबैर अहमद, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं इस वक्त, वो जो कहेंगे आगे उस पर तो आप नज़र आप रखेंगे ही, लेकिन वहाँ का नज़ारा क्या है, माहौल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, जैसे ही जुबैर अहमद से हमने संपर्क करने की कोशिश की उनसे संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य यहाँ स्टूडियो में मेरे पास मौजूद हैं। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुबैर अहमद के पास जाने की, लेकिन दिव्या आप क्या खबर लाई हैं?
आप जैसा बताने ही वाले थे, गौतम गंभीर जो इस बार बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं, उनकी प्रचार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हो रहे हैं और इस वक्त रामलीला मैदान से वो बोल रहे थे। गौतम गंभीर बीजेपी के सभी दिल्ली के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा संपत्ति रखते हैं। वैसे उनकी टक्कर आम आदमी पार्टी की आतिशी के खिलाफ है, जिन्हें एक बेहद मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा है। दिल्ली में 7 संसदीय सीटें जो हैं सातों ही बीजेपी के पास हैं, पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश में सरकार होने की वजह से यहां कड़ी त्रिकोणीय टक्कर है। आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन ना होने की वजह से दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है, और इसी का जिक्र आज अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और वहां कहा,
वो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, राजस्थान में उन्होंने करी एक भी, उन्होंने मध्य प्रदेश में करी एक भी, छत्तीसगढ़ में करी एक भी, जहां बीजेपी से सीधे टक्कर है वहां ये भाई बहन कोई नहीं जा रहा दोनों में से।
और पहली बार आज प्रियंका गांधी भी दिल्ली में प्रचार करने पहुंची। उन्होंने बॉक्सर विजेंद्र सिंह और शीला दीक्षित के संसदीय क्षेत्रों में प्रचार किया। 80 साल की उम्र की दहलीज पार कर चुकी शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके रोड शो में बड़ी तादाद में लोग आए। प्रियंका गांधी छोटे बच्चों को गोद में बैठाती, फोटो खिंचवाती दिखी, और बाद में पाठशाला का ही उदाहरण दिया। और प्रियंका ने कहा,
इनकी तो ये स्थिति बन गई है, जो पाठशालाओं में बच्चे होते हैं ना, जो कभी अपना काम करके कक्षा में नहीं आते, और जब भी मैम पूछती है उनसे कि बेटा जवाब दो, तो कहते हैं कि क्या करूं जी, नेहरू जी ने मेरा पर्चा ले लिया और छुपा दिया है। कि मैं क्या करूं, या फिर कहते हैं कि मैं क्या करूं, इंदिरा जी ने किस कागज की किश्ती बना दी मेरे होमवर्क की और किस पानी में डुबो दी।
अपने ही अंदाज में प्रियंका गांधी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विकास के मुद्दे उठाने की जगह कांग्रेस की तरफ उंगली उठाने की चर्चा कर रही थी।
और एक बार फिर से चलते हैं रामलीला मैदान, जहां जुबैर अहमद हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उनसे फोन से संपर्क टूट गया था। जुबैर, अब क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी?
देखिए, इस समय मैं रामलीला मैदान से बाहर आया हूं ताकि आपकी आवाज मैं सुन सकूं, तो यहां पर आवाज उनकी ठीक से नहीं आ पा रही, लेकिन जितना मैंने सुना जब वो आए और अब तक वो 10 मिनट बोल चुके हैं, तो लोग ये हमेशा कहते रहे उनके बारे में कि वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हैं और ये कि वो मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये भाषण आज का पहले तो दिल्ली वासियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने आके उनका स्वागत किया है, और उसके बाद अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। जो भी पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं विकास के, उसको गिनाना शुरू किया उन्होंने, और कहा कि देशवासियों का वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद ही मैं बाहर आ गया ताकि आपके सवाल मैं सुन सकूं।
हमारे सवाल सुन सके। हमारे पास और बहुत सारे सवाल नहीं हैं, आप उनके भाषण पर नजर रखिए, क्योंकि इसी वक्त वो बोल रहे हैं। बस चलते चलते ये बता दीजिए कि कैसा नजारा है, माहौल कैसा है, लोग कितने हैं वहाँ?
देखिए, मैदान तो खचाखच भरा हुआ है, जो उसके बाहर भी जो सड़कें हैं दोनों तरफ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं और जो आम वोटर भी हैं, दिल्ली वासी हैं, वो सब रंग बिरंग कपड़ों में ढोल बाजे बजाते हुए सब यहाँ पहुंचे हुए हैं।
यानी उत्साह का माहौल है वहाँ पर,
उत्साह का माहौल है। कई लोग वापस भी जा रहे हैं ताकि उनकी खड़े होने की
जगह नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां गठबंधन के 2 नेताओं यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने आजमगढ़ में एक साझा चुनावी सभा की। यहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सभा में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी मौजूद थे। मैंने कुछ ही देर पहले उनसे बात की और पूछा वोटर की नब्ज क्या बता रही है।
गांव के लोगों को बहुत फायदा नहीं हुआ। हमने पूछा कि भाई जैसे रसोई गैस आई तो लोग कहते हैं गैस तो मिली लेकिन अब वो 900 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है। इसी तरह जो शौचालय बने कई लोगों ने कहा है लेकिन कहा कि ज्यादातर शौचालय इसमें 12,000 में खराब क्वालिटी के बने हैं कि वो धंस जाते हैं, इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं
जी।
लेकिन मेन बात लोगों की यही थी कि खेती के लिए कुछ नहीं हुआ और छोटे जो उद्योग हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए 5 सालों में कोई व्यवस्था नहीं थी।
आपका अनुभव जो है रामदेव त्रिपाठी जी, जो उत्तर प्रदेश के और दूसरी जगहों के चुनाव कवर करने का लंबा अनुभव रहा है, आज की जो सभा थी उसमें अखिलेश यादव और मायावती के भाषण सुन के और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप गठबंधन के बारे में क्या नतीजा निकाल रहे हैं? मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भविष्यवाणी करें, लेकिन किस तरफ जा रहा है?
दोनों नेताओं के अलावा चौधरी अजीत सिंह भी आए थे। हालांकि अजीत सिंह केवल 3 सीटों से लड़ रहे हैं उनकी पार्टी लोक दल, लेकिन रैली में बराबर से तीनों दलों के झंडे लगे हुए थे, तीनों दलों के जो नेता हैं उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए। तो एक चीज तो ये देखने में आ रही थी कि भाई दोनों पार्टियों या तीनों पार्टियों के वर्कर्स में आपस में काफी तालमेल है और इस तालमेल की वजह से ये जो गठबंधन है वो काफी जगह भारी पड़ रहा है। अभी हम जौनपुर में खड़े हैं चाय की दुकान से, यहाँ भी पूछा हमने तो उनका यही भी कहना था इन लोगों का भी कि यहाँ जाति ज्यादा हावी हो जाती है चुनाव के दौरान और उस जाति समीकरण में गठबंधन काफी भारी पड़ रहा, खास करके जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय भी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद उम्मीदवार है, पिछली बार मुलायम सिंह यादव थे उनके पिता, तो वो ये अभी वो ये कह रहे थे कि हम सीटें तो नहीं बता पाएंगे कितने जीतेंगे।
बहरहाल अभी इस पर तो कुछ कहना मुश्किल है कि वो तो 23 मई को ही जनता का फैसला सामने आएगा। लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि दूसरी जगहों पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है तो क्या वहाँ भी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं?
देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो जहाँ तक है वो सभी जगह उन्होंने अपने उम्मीदवारों को पीछे कर दिया है और सब जगह वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को वोट दो और मोदी जी खुद भी कह रहे हैं कि आप अगर कमल पे बटन दबाएंगे कमल की तो वो वोट आपका सीधे मुझे मिलेगा। तो सब जगह मोदी ही उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो और पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी हर जगह के क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से उतारे हैं, मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और वो गठबंधन के साथ साथ वो प्रत्याशियों के भी वोट मांग रहे हैं। और ये भी है कि अब ये आखिरी दौर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, 12 तारीख और 19 तारीख को तो प्रचार के लिए काफी जोर है। कल देखिए प्रियंका गांधी आ रही है यहाँ कई जिलों में, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इलाहाबाद आ रहे हैं, हालांकि पहले था कि शायद नहीं आएंगे।
ये थे आजमगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी और दिव्या से बात अधूरी रह गई थी। दिव्या आर्य मेरे सामने बैठी हुई हैं। आप, राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में शायद माफी मांगी है।
बिल्कुल, आखिरकार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। माफी उन्होंने पहले भी मांगी थी। मामला है भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका का जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें राहुल गांधी के चौकीदार चोर है जुमले को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई है। चौकीदार चोर है कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है और राहुल गांधी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं गलती से प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट बताने के लिए कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया था। 10 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि रफाल विमान सौदे पर सरकार को दी गई क्लीन चिट पर पुनर्विचार याचिका मानकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।
तो ये गलती उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में मान ली। दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन भर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके साथ 2015 में किए गए परमाणु समझौते पर दस्तखत करने वाले देशों ने उसे समर्थन नहीं दिया तो वो संवर्धित यूरेनियम को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को 60 दिन का समय दिया है। इस धमकी के बाद रूस, फ्रांस और चीन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस समझौते से अलग होने का एक तरफा फैसला किया था। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुना रही हैं भूमिका राय।
ईरान के रुख में आए बदलाव पर रूस ने सफाई मांगी है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा है कि इस संकट की मुख्य जिम्मेदारी अमेरिका की है।
मैं समझता हूँ कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया गया था। इसे लेकर जो स्थिति बिगड़ रही है उस मुद्दे पर हमें बात करनी होगी। यह स्थिति अमेरिका के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण ये पैदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संधि में अमेरिका अपने वायदे से पीछे हट गया है।
ये थे रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के शब्द। रूहानी ने चेतावनी दी है कि अगर समझौते में शामिल बाकी 5 महाशक्तियां ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए आगे नहीं आती हैं, तो वो यूरेनियम का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। समझौते के तहत ईरान को अपना अतिरिक्त यूरेनियम उत्पादन जमा करने के बजाय विदेश में बेचना अनिवार्य था। चीन ने सभी पक्षों से परमाणु समझौते का सम्मान करने की अपील की है।
व्यापक समझौते को बरकरार रखना और उसे लागू करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष धैर्य रखेंगे, बातचीत को बढ़ाएंगे और स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग के शब्द। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा है कि यूरोपीय शक्तियां इस समझौते को बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे और शायद कड़े प्रतिबंध लगें। ईरान के परमाणु समझौते में अमेरिका के अलावा चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं। समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं के बुलाने पर भी राजी हो गया था। इसके बदले अमेरिका उस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत हुआ था, लेकिन एक साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से अलग होने की घोषणा की। साथ ही उसने कई नए प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने 5 देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी। पिछले महीने अमेरिका ने इस छूट को भी 1 मई से खत्म करने की घोषणा कर दी। छूट पाने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा है। अमेरिका के इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। बढ़ते तनावों के बीच खबर है कि अमेरिका ने इस इलाके में अपना विमान वाहक युद्धपोत और B-52 बम वर्षक लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। इस इलाके में अब एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय और आदर्श कुमार गुप्त मेरे सामने बैठे हैं खेल समाचारों के लिए।
जी राजेश जी, इस समय अगर IPL बारे की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है विशाखापत्तनम में, जहां से ताज़ा समाचार ये है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान शिरा सैयद ने टॉस जीता और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी है। थोड़ी देर पहले जब छठा ओवर शुरू हुआ है तो सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 44 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे रिद्धिमान साहा, जो ईशांत शर्मा की गेंद पर कप्तान शिरेश अय्यर के हाथों लग गए, उन्होंने 8 रन बनाए। और इस समय मार्टिन गप्टिल 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं नए बल्लेबाज मनीष पांडे। और इस मुकाबले की खास बात ये है कि जो भी टीम आज का मुकाबला हारेगी वो बाहर हो जाएगी, लेकिन जो टीम जीतेगी वो फिर शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी, और फिर जो उसके विजेता टीम है वो रविवार को फाइनल मुकाबले में, जो कल पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला गया था, उसकी विजेता मुंबई इंडियंस का सामना करेगी।
आदर्श कुमार गुप्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते एक नज़र सुर्खियों पर।
BBC समाचार। अमेरिका ने कहा है कि 2015 में विश्व शक्तियों से हुए परमाणु समझौते के कुछ पक्षों से पीछे हटना ईरान का ब्लैकमेल है। पाकिस्तान में इश निंदा के आरोप में 8 साल तक जेल में रही ईसाई महिला आसिया बीबी ने आखिरकार देश छोड़ दिया है। आसिया बीबी के वकील ने BBC को बताया कि अब वो कनाडा में हैं। पाकिस्तान के लाहौर की एक सूफी दरगाह में आज संदिग्ध आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए। दक्षिण अफ्रीका में आज आम चुनाव हुए। पिछले 25 साल से देश की सत्ता पर काबिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसने 2018 से अब तक कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 500 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाया और उन्हें सज़ा दी। इराक के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल करीब 200 विदेशी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। BBC समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के स्टूडियो मैनेजर थे शाकिर आलम, मैं राजेश जोशी अपने सभी साथियों की ओर से आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे तक आपके साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।